شنبه. संसार में दुख तो अनेक कारणों से आता है, लेकिन हमारे विचार में अभिमान ही सभी दुखों की जड़ है। चाहे धन का अभिमान हो, पद का अभिमान हो, बुद्धि का अभिमान हो, ये सब अभिमान तो है ही, लेकिन देह का अभिमान ये वास्तव में सभी दुखों की जड़ है। देह अभिमानी व्यक्ति देह पर ही आकर्षित होता रहता है, चाहे वह स्वयं की देह हो, चाहे वह अन्य की देह हो, लेकिन देह पर आकर्षित होना, देह का अभिमान रखना, यह देह अभिमान है। देह पर आकर्षित होना माना देह के आकार तरफ आकर्षित, या देह की कोई विशेषता तरफ, या कला तरफ, या शारीरिक शक्ति तरफ आकर्षित होना, ये सब देह अभिमान है। इसमें चाहे स्वयं की देह हो, चाहे अन्य की देह हो, और इसी देह अभिमान के कारण धीरे धीरे अभिमान बढ़ता जाता है, और वह अभिमान नशा का रूप ले लेता है, और फलस्वरूप रोग का भाव ले लेता है। ये देह अभिमान कैसे आरंभ होता है? अगर देखा जाए तो देह अभिमान आने का दरवाजा एक ही है, और वह दरवाजा है मैं। सुबह से लेकर रात्रि तक अगर हम गिनती करें तो कितनी बार मैं शब्द हम कहते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ। तो अगर आप हिसाब निकालें, अनगिनत बार मैं शब्द का प्रयोग होता है, और मैं दे अभिमान आने का दरवाजा है। दे अभिमानी व्यक्ति सदा अतृप्त रहता है, चाहे उसे कितना भी कुछ मिल क्यों न जाए, लेकिन वह सदा ही असंतुष्ट रहता है। सदा ही वह मान का, नाम का, शान का भूखा ही रहता है। मानो कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह भिखारी की तरह है। भिखारी तो भिखारी होता ही है, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता, शायद खाने के लिए भी कुछ नहीं हो। लेकिन जो व्यक्ति देह अभिमानी है, उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह भिखारी है, क्योंकि मान, नाम और शान की भूख तो सदा ही उसके मन में रहती ही है। वो यही सोचता है कि सब मेरी महिमा करें, और जब महिमा कोई उसकी करेगा तो खुश होगा, प्रसन्न होगा, प्रफुल्लित होगा, और अगर कोई उसकी महिमा नहीं करेगा तो निराश होगा। हमने देखे हैं कई ऐसे लोग, कई प्रकार की स्थितियों से वो गुजरते हैं। अगर किसी ने मान दिया तो प्रसन्न हो गया वो व्यक्ति, अगर अपमान किया तो तुरंत उसका सुख, उसकी खुशी एक घड़ी में समाप्त हो जाती है। मानो कि उसकी खुशी एक फुगे की तरह थी, जैसे एक बलून होता है, उसमें अंतर में हवा भरी हुई होती है, बड़ा सुंदर लगता है, आकर्षित लगता है। लेकिन अगर किसी ने एक सुई भी उसे लगा दी, तुरंत वह बलून फट जाता है। तो अभिमानी व्यक्ति की वह दशा है, एक घड़ी में प्रसन्न और दूसरी घड़ी में निराश, क्योंकि महिमा हुई तो प्रसन्न और निंदा हुई तो अपमानित महसूस करता और वह अपमान सहन नहीं करता। कई बार तो दे अभिमानी को अगर और कोई व्यक्ति मान नहीं देते या और कोई व्यक्ति उसकी बढ़ाई नहीं करते तो वह स्वयं ही अपनी बढ़ाई करने लग पड़ता है। तो जहां पर व्यक्ति अपनी बढ़ाई करे और अन्य की निंदा करे, समझो यह देह का अभिमान है। देह अभिमानी व्यक्ति कभी भी अपनी भूल स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह लाख भूलें करे, अनेकों को दुख दे, और जब उसे बताया भी जाता है कि ये आप गलती कर रहे हो तो वह अपनी गलती कभी भी महसूस नहीं करेगा, और ही वह जिद करेगा, अपनी बात पर अड़े रहेगा, और अगर भूल होगी भी तो भी वो कभी स्वीकार नहीं करेगा, और ही वह अनेकों की भूल निकालेगा, निर्दोष पर भी दोष धर देगा, पर खुद की भूल नहीं स्वीकार करेगा। ये है अभिमानी व्यक्ति की दशा। अब आप बताइए, ऐसा व्यक्ति क्या कभी सुखी रह सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति कभी शांति का अनुभव कर सकता है? क्या ऐसा व्यक्ति कभी दूसरों को सुख बांट सकता है? कभी नहीं। अभिमानी व्यक्ति को थोड़ी सी अगर प्राप्ति हो जाती है तो वह तो समझता है बस मैं तो मालिक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। वो भूल जाता है कि जो उसके पास प्राप्ति है, वह दुनिया के अंदर जो कुछ है उसकी भेंट में तो उसके पास कुछ भी नहीं है। जैसे आपने एक मिसाल सुना होगा एक सेठ जी का, उसके पास एक निर्माण व्यक्ति गए, संत महात्मा गए, और वह अभिमानी व्यक्ति सेठ जी अपनी ही बढ़ाई करता रहा, मेरे पास ये है, ये मकान है, इतनी फैक्ट्री है, आदि आदि जो कुछ उसके पास था वह बताता रहा और अपनी बढ़ाई करता रहा। महात्मा जी ने महसूस किया कि यह व्यक्ति बड़ा अभिमानी है, इसका अभिमान कैसे दूर किया जाए? अभिमानी व्यक्ति का अभिमान भी सहज दूर नहीं होता। अगर अभिमानी व्यक्ति को कहा भी जाता है कि ये तेरा अभिमान है तो वह भी स्वीकार नहीं करेगा। तो कैसे दूर किया जाए? महात्मा जी को एक युक्ति सूझी। उसने सेठ जी से कहा, आपके पास विश्व का नक्शा है? तो कहा, हाँ बिल्कुल है। बड़े नशे से कहा, बहुत सुंदर नक्शा आपने घर में लगाया हुआ था वह दिखाया। फिर बताया कि अच्छा आप ये बताएं कि इसमें भारत कहाँ है, वो भी दिखाया। छोटा सा स्थान है भारत पूरी दुनिया की भेंट में। फिर बताया कि आप ये कहें कि इसमें बंबई कहाँ है, वो भी बताई, क्योंकि बंबई तो केवल नाम ही लिखा होगा। परंतु फिर जब ये पूछा कि इसमें यह बताएं कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ, तो वो कहाँ विश्व के नक्शे में आएगी। तब सेठ जी को महसूस हुआ कि मैं ये कितनी गलती कर रहा था, मैं किसके आगे अभिमान व्यक्त कर रहा हूँ? एक महान आत्मा के सामने, जो व्यक्ति इस संसार की भौतिक चीजों को तो स्वीकार ही नहीं करता, जो स्वयं ही अपनी भौतिकता से दूर हटकर आत्मिक चिंतन में लगा है, मैं उस व्यक्ति के सामने अपनी क्या पढ़ाई कर रहा हूँ? तो देखिए, अभिमानी व्यक्ति ये भी नहीं समझ पाता कि वह किसके आगे अपना अभिमान व्यक्त करता है। थोड़ी सी प्राप्ति पर वह इतना अभिमान दिखाता जैसे कि उनसे बड़ा कोई दुनिया में ही नहीं है। एक मिसाल आता है कि चूहे ने हल्दी की गांठ प्राप्त की और उसे लगा कि मैं भी एक पंसारी हूँ। तो ये है आज के मनुष्य की हालत। थोड़ी सी प्राप्ति हो जाती है और वह समझता है कि मैं तो बहुत कुछ हूँ। लेकिन हमारे से कई हैं जिनके पास अनेक गुना, हजार गुना, लाख गुना अधिक है। आज कोई व्यक्ति सुंदर है और वो सोचे मैं सुंदर हूँ, लेकिन क्या वो सुंदरता कायम रहेगी? कहा जाता चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। किसी के पास बल हो, शक्ति हो, स्थूल ताकत हो, लेकिन कोई बीमारी आ गई, उसकी शक्ति नष्ट। तो ये जो भौतिक चीजें हैं, ये नश्वर है, ये विनाशी है, और विनाशी चीजों का अभिमान रखना ये निरर्थक है, ये अज्ञान है। जो सच्चा ज्ञानी होगा वह कभी भी देह अभिमान नहीं अपने अंदर आने देगा। देह अभिमान को जिसने जीता है मानो वही सच्चा ज्ञानी है। अगर ज्ञानी को ज्ञान का भी अभिमान आ जाए तो वह भी अज्ञान हो जाता है। तो जहां अभिमान है वहां अज्ञान साथ में है ही, और अज्ञान की तुलना अंधकार से की जाती है और ज्ञान की तुलना प्रकाश से की जाती है। तो जहां अभिमान है मानो उसके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। जैसे कोलू का बैल, पहले जमाने में कोलू के बैल हुआ करते थे जो तेल पीसते थे, तेल बनाते थे, और वे चारों तरफ गोल ही गोल आकार में घूमते थे, लेकिन आंखों पर पट्टी बंधी हुई होती थी। तो बैल ये सोचते होंगे कि सुबह से रात तक तो हमने कितनी लंबी यात्रा की, हम कितने घूमे हैं, शायद हम बहुत दूर चले गए हैं। लेकिन अगर आंख खोल कर देखे, पट्टी खोल कर देखे, तो वो अनुभव करेंगे कि हम तो वही हैं। तो यही देह अभिमानी व्यक्ति की स्थिति है। वो समझता है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया हूँ, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। जैसे आज विज्ञान का कितना बड़ा अभिमान है, इंसान आज चांद तक पहुंच गया है, मंगल ग्रह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, न जाने विज्ञान ने कितनी तरक्की की है और कितनी न आगे तरक्की करेगा। ये अच्छी बात है, ये मनुष्य के सुख के लिए है, लेकिन अगर उसका निरर्थक अभिमान रखा तो ये अभिमान हमें ही नीचे गिराएगा। जैसे कोई ऊंची मंजिल पर व्यक्ति पहुंच जाए और फिर उस ऊंची मंजिल से वो नीचे गिरे, इस प्रकार दे अभिमानी व्यक्ति की स्थिति होती है। मान लो किसी के पास धन का अभिमान है और आज उसके पास बहुत धन है, कल उसका धन चला गया, अब उस व्यक्ति की क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। वह अपना मुख भी दिखाने के लायक नहीं महसूस करता अपने आप को, क्योंकि दे अभिमान से वो चूर था। आज कोई व्यक्ति सुंदर है, कल बीमारी आ गई, सुंदरता खत्म हो गई, तो वह व्यक्ति अपना मुखड़ा भी नहीं दिखा पाएगा किसी और को, अंतर में ही वह दुखी होता रहेगा, शर्मिंदा होता रहेगा, समाज के आगे आएगा नहीं, क्योंकि दे अभिमान उसे नीचे गिरा देता है। वास्तव में दे अभिमान की कोई आवश्यकता नहीं। यह विनाशी शरीर है, इसमें सब कुछ विनाशी है। अगर सचमुच हमें अभिमान रखना है तो आत्मा का अभिमान रखो। आत्मा जो अविनाशी है, उस अविनाशी आत्मा का अभिमान रखने से आत्मा के अंदर स्वमान आता है। हम महसूस करते हैं कि हम आत्मा कितने गुणों से संपन्न है, शांति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, ये स्वमान रखिए तो देह का अभिमान अपने आप नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, सदा अपने आप को निमित्त समझे, मैं निमित्त हूं। ईश्वर के लिए कहा जाता है, करन करावन आपे आप, मानुष के नाही हाथ। वास्तव में कर्ता तो इंसान ही है, भगवान तो अकर्ता है और अभोक्ता है। हम आत्माएं जैसा करेगी वैसा फल भोगेगी। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ फल भोगेंगे, भ्रष्ट कर्म करेंगे तो भ्रष्ट फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन हम सदा यही सोचें कि हाथ भल मेरे हो, लेकिन शक्ति तो उस परम पिता परमात्मा की है, और निमित्त समझ करके हम श्रेष्ठ कर्म करते जाएं। हम अंतर में यही सोचें कि मैं निमित्त बन करके कार्य करा रहा हूँ, कर रहा हूँ, और भगवान मुझसे करा रहा है। शरीर की इंद्रियों से मैं आत्मा करा रही हूँ और परमात्मा मुझ आत्मा से करा रहा है। ये जब बुद्धि में होगा तो हमारे अंदर नम्रता भी आएगी। नम्रता के गुण से देह अभिमान सहज नष्ट हो जाएगा। अगर हमें नम्रता लानी है अपने जीवन में तो एक बात सदा याद रखो, और वह है कि सबसे मुझे गुण लेना है, सबसे मुझे सीखना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पढ़ा हुआ हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, चाहे कोई भी हो, कैसी भी वस्तु हो, मुझे उससे गुण लेना है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि मुझे उससे सीखना है, तो सीखने की भावना आते ही नम्रता की भावना अवश्य पैदा हो जाएगी, चाहे दृष्टि में, चाहे वाणी में, चाहे कर्म में, मुझे नम्र बनना है। ये अंतर में लक्ष्य रहे, मुझे सबसे सीखना है। दत्तात्रेय का मिसाल है, उसने 24 गुरु किए अपने जीवन में, अर्थात एक एक से सीखा। गुरु करने का अर्थ ये नहीं है कि केवल गुरु का मंत्र ले लिया, लेकिन गुरु करना माना उनसे सीखना, सदा सीखने की भावना रखना। और जिसमें सदा सीखने की भावना रहती है वो हमेशा आगे बढ़ता है। देह अभिमानी व्यक्ति के अंदर कभी भी सीखने की भावना नहीं होगी, वो यही सोचेगा कि मुझे क्या कोई पढ़ाएगा, मैं तो सब कुछ जानता हूँ। जो समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, शायद वो भगवान से भी बड़ा हो गया, क्योंकि भगवान ही तो सब कुछ जानता है। परमात्मा के लिए ही हम कहते हैं कि जानी जानन हार है, ज्ञान का सागर है, त्रिकाल दर्शी है। तो अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो शायद भगवान से अपनी तुलना करता है, परंतु ये हमारी ही मूर्खता होगी, हमारा ही अज्ञान होगा। क्योंकि मनुष्य आज इतना अल्पज्ञ है कि वर्तमान में भी कभी कभी वो अनभिज्ञ हो जाता है, भूत और भविष्य ये तो दूर की बातें हैं। तो इसीलिए हमें देह अभिमान को समाप्त करना होगा, हमें अंतर में आत्म अभिमानी स्थिति को लाना होगा, और किसी भी प्रकार की इच्छा से हमें दूर रहना होगा। कभी भी ये इच्छा न हो हमारे मन में कि हमें मान मिले, हमारा नाम हो, हमारा शान हो, हमारी महिमा हो, क्योंकि वास्तव में ये इच्छाएं भी अल्पकाल की ही तो है। मान लीजिए आज किसी व्यक्ति ने मेरा मान किया, परंतु कल वही व्यक्ति मेरा अपमान भी कर लेगा, तो मान मिलने से जो खुशी हुई और अपमान मिलने से जो गम हुआ वो बराबर हो जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं कि सब में समान रहो, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, चाहे कोई मेरी महिमा करे चाहे कोई निंदा करे, लेकिन दोनों को समान देखो। हमको सदा ये सोचना है कि भगवान की नजरों में मैं कैसा हूं। इंसान तो अपनी नजर से हमें देखेगा। जो व्यक्ति मेरे से ईर्ष्या करता होगा वो कभी भी मेरी महिमा सुन नहीं सकेगा, लेकिन भगवान की नजरों में मुझे ऊंचा बनना है, ये सदा लक्ष्य रखो। और जब मैं शब्द हम कहें तो मैं शरीर के बजाय मैं आत्मा, ये शब्द हम जोड़ दें। हम ये कहेंगे मैं आत्मा और मेरा शरीर। ये शरीर मेरा अवश्य है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। कई बार हम ये भी नहीं समझ पाते हैं कि हम मैं और मेरा किसने कहें। शरीर के लिए मैं कह देंगे और आत्मा के लिए मेरा कह देंगे। जैसे मेरी आत्मा इस शरीर में है या मेरी आत्मा मेरे में है, वास्तव में मैं आत्मा इस देह में हूं। यहां तक भी कई लोग कह देंगे मेरी आत्मा मेरे शरीर में है, तो कई बार प्रश्न उठता है कि आत्मा भी मेरी और फिर शरीर भी मेरा, तो फिर मैं कौन? क्या मैं कोई तीसरी चीज हूं जो शरीर और आत्मा दोनों से अलग हूं? नहीं, वास्तव में है ही दो चीजें, शरीर और आत्मा। और इस शरीर रूपी रथ पर सवार मैं आत्मा हूं, ये कभी भी ना हम भूलें। चाहे आपके शरीर का कुछ भी नाम हो और वह नाम कोई पुकारता है मान लीजिए, लेकिन सुनता कौन है? आत्मा सुनती है। आप रास्ते पर जाते हो, आपको टैक्सी चाहिए और आप दूर से कहेंगे टैक्सी, लेकिन सुनेगा कौन? टैक्सी तो नहीं सुनती, टैक्सी में बैठने वाला ड्राइवर सुनता है और वह आपके आगे टैक्सी खड़ी कर देगा। इसी प्रकार चाहे हम देह का नाम पुकारते हैं, लेकिन उस देह में सुनने वाला कौन, देखने वाला कौन? वो है मैं आत्मा। क्योंकि जब हम कहते हैं मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, तो देखने वाला सुनने वाला इस शरीर से अलग है। आंखें तो केवल खिड़की के समान है, खिड़कियों को नहीं मालूम कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है, लेकिन आत्मा इन आंखों की खिड़कियों से देखती है और निर्णय करती है कि ये अच्छा दृश्य है या बुरा दृश्य है। तो मैं आत्मा इस शरीर के अंदर विराजमान हूं, ये अगर भान रहा तो आत्म अभिमानी हम बन सकेंगे। और जब आत्म अभिमानी बने तो परमात्म अभिमानी बनना बहुत सहज होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू गॉड रियलाइजेशन। अगर सेल्फ या आत्मा का रियलाइजेशन नहीं और परमात्मा का भी रियलाइजेशन नहीं, तो फिर देह का ही रियलाइजेशन है, और यह देह का रियलाइजेशन एक बहुत बड़ा अज्ञान है जो आज हमें चढ़ाएगा और कल हमें गिराएगा। तो न हम चढ़ने में रहे न हम गिरने में रहे, सदा ही एक रस हमारी स्थिति रहे, आत्मा की स्थिति रहे, आत्मा का चिंतन रहे, परमात्मा की याद रहे, तो यह देह अभिमान नष्ट हो जाएगा और आत्मा सच्ची शांति, सच्ची खुशी, सच्चे आत्मिक प्रेम का अनुभव कर सकेगी। आत्मस्थिति में रहकर, परमात्मा की याद में रहकर, परमात्मा से सर्व गुण भी सहज रीति से प्राप्त कर भरपूर हो जाएगी। ओम शांति।